रात्रि क्लास चल रहा था 14/1/1967 पहले पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। अभी तो वो ब्रह्मा द्वारा अभी माने कभी 1967 में अभी तो वो ब्रह्मा द्वारा वो माने कौन दादा लिख रहे अभी तो वो ब्रह्मा द्वारा वो माने कौन
आने वाले 67 की वाणी है।
हाँ ब्रह्मा द्वारा कौन वो माने दूर कह के बता दिया। अभी तो वो अभी 67 में ब्रह्मा द्वारा वो कह के किसको को बोला? अरे शिव बाप 67 में ब्रह्मा द्वारा कौन बोल रहा था? है शिव बाप ब्रह्मा द्वारा रथ तो उनको चाहिए ही किनको शिव बाप को रथ तो चाहिए ही और यहाँ तो लगा हुआ है सीधा कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो स्वर्ग की स्थापना कौन से ब्रह्मा के द्वारा? यहाँ तो लगा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो अभी जो ब्रह्मा है माने 67 में उसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना नहीं कर रहे है? कर रहे या नहीं कर रहे?
नहीं कर रहे।
शरीर तो छूट गया 18 जनवरी 69 में और मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो 67 में जिस ब्रह्मा में प्रवेश किया जिसका नाम दादा लेखराज का ब्रह्मा रखा उसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना की बात है क्या?
नहीं।
तो वो कौन सा ब्रह्मा जिसके लिए बोला स्वर्ग की स्थापना?
परम ब्रह्म प्रजापिता ब्रह्म।
और ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना, कोई एक ब्रह्मा तो है नहीं, ब्रह्मा तो अनेक नामधारी हैं, उनमें भी नंबर वार तो है ना। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उस अव्वल नंबर दम ब्रह्मा के द्वारा गाया हुआ है, मुसलमानों में भी गाया हुआ है अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अल्लाह ने आकर क्या किया? अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। तो 47 में जिस ब्रह्मा में प्रवेश किया उनका नाम ब्रह्मा रखा, उनके द्वारा वाणी चलाई, उस ब्रह्मा की बात नहीं है कि स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वो ब्रह्मा अव्वल नंबर का ब्रह्मा कहें या बाद वाला कहें?
बाद वाला।
बोला स्वर की स्थापना कर रहे हैं जिस ब्रह्मा के द्वारा, तो जरूर राजयोग पढ़ाएंगे है? किस ब्रह्मा के द्वारा राजयोग पढ़ाएंगे?
परम ब्रह्म के द्वारा।
जिस अव्वल नंबर ब्रह्मा में, अव्वल नंबर में प्रवेश किया, उस आत्मा की बात है जो आदि में भी था, आदि में सो अंत में भी होता है, उसी ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग स्थापन करेंगे। स्वर्ग स्व माने आत्मा, ग माने गया, कौन सी स्थिति में गया? स्वयं स्थिति में सदा के लिए गया। दिन रात के लिए गया स्व की स्थिति में, जन्म जन्मांतर के लिए गया स्वयं स्थिति में, तो जो धर्म पिताएं हैं वो तो स्वयं स्थिति में नहीं जाते हैं। स्व माने आत्मा का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, संपूर्ण आत्मा इसलिए बनते भी नहीं। 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं बनते, कम जन्म लेने वाली आत्मा बनते। कहेंगे अधूरी आत्मा, जैसे ब्रह्मा जिसको कहते हैं ज्ञान चंद्रमा, कम कलाओं वाला भी होता है या नहीं होता है?
होता है।
घटती बढ़ती कलाएं रहती हैं, तो जब घटती कलाओं वाला होता है तभी ये दूसरे दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं और उनको आधार देने वाली आत्माएं, उद्धार मूर्त आत्माएं, बीज रूप दोनों प्रकार की आत्माएं उठाने वाली बनती है। उससे पहले वो जानते भी नहीं है कि स्वयं स्थिति में स्थित होने से स्वर्ग बनता है। जो देवताएं गए हुए हैं उनके धर्मों में कि देवताएं जन्नत में होते थे, तो देखो राजयोग सिखाने वाला पहले पहले राजयोग सीखने वाला होगा या सिखाने वाला बनेगा?
सीखने वाला होगा।
जो सीखेगा ही नहीं वो सिखाएगा कैसे प्रैक्टिकल में? शिव बाप इसीलिए कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर माने प्रैक्टिकल में करने वाले। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हो नंबर वार, तो कोई अव्वल नंबर में भी है जो मास्टर त्रिकालदर्शी पहले पहले बनता है, और जो त्रिकालदर्शी ही नहीं बनेगा संपूर्ण ज्ञानी ही नहीं बनेगा तो संपूर्ण योगी बन सकता है?
नहीं बन सकता।
जितना ज्ञानी उतना योगी बनेगा। इसीलिए गीता में कहा सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता, जो विद्वान होते हैं, विद माने जानकारी, जानकारी रखने वाले होते हैं सच्चाई की, वो ये बात कभी नहीं कहते कि सांख्य अलग चीज है। सांख्य माने सह आख्या, व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए विस्तार में वो ज्ञानी अलग है और योगी अलग है। क्यों नहीं कहते कि योगी अलग है ज्ञानी अलग है? पहले ज्ञान आता है या प्रैक्टिकल में योग करना आता है? ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी ही नहीं होगी तो बाप को पहचानेगा? जो जितना ज्ञान सागर बाप को पहचानेगा, गहराई तक, वो उतना ही योगी बनेगा। तो बोला जिस ब्रह्मा द्वारा स्वर की स्थापना कर रहे हैं वो ब्रह्मा स्वर्ग स्थापन करने वाला है प्रैक्टिकल में। मैं तो सिर्फ ज्ञान का अखूट भंडार हूँ। किसने कहा? मैं योग का अखूट भंडार नहीं हूँ, मैं योगी हूँ। कोई कहे योगी नहीं हूँ तो ज्ञानी कैसे कहे? अरे वो किससे योग लगाएगा? जिससे योग लगाएगा वो ही बड़ा हो गया, और वो तो बापों का बाप है। क्या दुनिया में जितने भी ग्रेट फादर्स धर्म पिताएं कहे जाते हैं उन बापों का भी बाप ग्रैंडफादर, आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, आत्माओं का सिर्फ बाप है या ग्रैंडफादर भी है? बाबा है, बाप है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब कोई साकार मनुष्य में प्रवेश करे। जिस साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो ही साकार मनुष्य तन तमेव माता, तम माने तू, संस्कृत में तम एक को कहा जाता है या दो चार को? तमेव माता च पिता तमेव, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, माने तू ही मेरी ग्रैंड मदर और तू ही मेरा ग्रैंड फादर, माना एक ही है जिसके लिए हम भक्ति मार्ग में गाते रहे तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, अनेक संबंधों वाले सुख। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब प्रकार के संबंधी हो। तो प्रैक्टिकल में कौन हुआ, कौन सी आत्मा के लिए बोला?
प्रजापिता ब्रह्म क्या
हुआ? प्रजापिता पतित को कहेंगे, दाढ़ी मूछ वाले को प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। वो पतित नहीं है तुम में माता पिता, वो है जो पक्का पावन बन जाता है, बाप समान बन जाता है। बाप नहीं बन जाता, क्या बन जाता? बाप समान बन जाता है। इसलिए मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा नहीं है लेकिन खुदा का नूर तो है, है खुदा की जो रोशनी है रूहानियत की, वो 100% रूहानियत की रूह तो है या नहीं है?
है।
तो बोला वही रूह कहती है जिसके लिए सारी मनुष्य सृष्टि, जब वसुधैव कुटुंबकम बनती है, उसे एक बाप की प्रैक्टिकल संतान अपन को स्वीकार कर लेती है, उस समय का गायन है क्या? क्या गायन है? वो तो है, लेकिन जो गीता में महामंत्र का गायन है कौन सा? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा ने बोला? शिव बाप ने नहीं बोला?
नहीं।
क्यों नहीं बोला?
क्योंकि उसका मन है ही नहीं।
वो सदा मन है, उसको संकल्प विकल्प मन से चलाने की दरकार है ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा ये बात बोली जाती है इंटरफियर करके, क्योंकि बोला है ये ब्रह्मा, इंटरफियर करके भी बोलता है। क्या ब्रह्मा? कोई भी ब्रह्मा हो, शिव बाप का बच्चा है या नहीं है? मुरली में पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, माना ये तो नहीं कहा अव्वल नंबर ब्रह्मा दोयम नंबर ब्रह्मा। कोई भी ब्रह्मा हो, क्योंकि जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा का बाप कोई हुआ या नहीं हुआ? मोस्टली बाप ही नाम रखते, दुनिया में भी ये देखा जाता है। तो वो शिव बाप उसी ब्रह्मा के तन से कहते हैं कि मुझे उसका रथ चाहिए मुकर्रर रूप में, जो ज्ञान भी सुनाऊं और उस रथ के द्वारा प्रैक्टिकल में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भी दिलाऊं। शिव बाप को कहेंगे प्रैक्टिकल में
नहीं।
मुक्ति दाता
नहीं।
क्यों नहीं कहेंगे?
क्योंकि
जो मुक्ति दाता होगा, जो धन दाता होगा, जो ज्ञान दाता होगा, वो ज्ञानी होगा, धनदाता होगा तो धनवान होगा, जमींदार होगा तो जमीन वाला होगा, खुद है ही नहीं तो दूसरों को देगा है?
नहीं देगा।
तो वो सुप्रीम सोल बाप, सुप्रीम गॉड फादर जो कहा जाता है बापों का बाप, वो क्या है? उसके पास बाप है तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। क्या प्रॉपर्टी देता है? अखूट ज्ञान का भंडार है, वो तो अखूट ज्ञान का भंडार देता है, कोई ले या न ले, अंश मात्र ले या सारा ले ले, लेकिन वो तो दाता है। अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा, क्या करेगा? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, जो जितना आत्मा के अर्थ कल्याण के लिए करेगा, देह के लिए नहीं, क्या आत्मा के कल्याण के अर्थ जो जितना करेगा, समय का दान करेगा। सबसे ज्यादा वैल्यू इस दुनिया में किस चीज की है? समय की बहुत वैल्यू। लोग कहते हैं मोस्टली हमारे पास टाइम नहीं है, तो जो जितना ईश्वर के लिए, ईश्वर का जो कार्य है नई सृष्टि स्थापन करना, नरक को स्वर्ग बनाना, इस काम में जो जितना समय देगा, कोई है देह के पोषण के लिए सारा दिन देते हैं, बाप कहते हैं चलो अमृत वेला तो कोई धंधा नहीं होता है, अमृत वेले ही याद करो, तो क्या होता है? नींद आने लगती है, या तो सारा दिन जो धंधा करेंगे वो ही धंधा याद आता है, रात को सो जाएंगे तो भी, मिसाल दिया बजाज है कपड़ा बेचता है दुकान में सारा दिन, रात में सोता है अपनी धोती फाड़ देता है। देखो मन के संकल्पों में भी वो ही धंधा, और प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से भी, सोते सोते भी वो ही धंधा। अब बताओ कितना समय का दान दिया बजाज ने, सोने का भी 4-8 से लेकर के 24 होता हो, सारा टाइम चला गया, जागते समय दिन में भी वो भी सारा टाइम चला गया। नियम बांध रखा है नेमिनाथ ने कि क्लास में जाएंगे, मुरली सुनेंगे, याद में बैठेंगे, लेकिन फिर होता क्या है? या तो सो जाते हैं, या तो दुकान में बुद्धि चली जाती है, धंधे धोरी में ही बुद्धि चली जाती है। तो जो संगठन का वाइब्रेशन है वो तोड़ने वाले बनते हैं, दुनिया भी वाइब्रेशन बनाते हैं, या ईश्वरीय वाइब्रेशन बनाते हैं?
तोड़ने वाले बनाते हैं।
देखो कितना घाटा आता है, कोई कोई ऐसे भी हैं रेगुलर स्टूडेंट, लेकिन हर सेंटर में देखो जाके उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, बहुत में बहुत को पांच पांडवों की है या ज्यादा है, रेगुलर रोज क्लास करने वालों की। उनमें देर के देर ऐसे ही नैमी नाथ हैं, नियम बांध रखा है। नहीं तो ज्यादातर तो ऐसे हैं जो नियम पूर्वक मंदिर में जाने की शूटिंग भी नहीं करते हैं, वो भी रिहर्सल नहीं करते हैं। मुसलमानों की तरह जुम्मा जुम्मा क्या
जामा मस्जिद में
सिर्फ है, सात दिन में एक बार मुश्किल से जाते हैं, वो भी पता नहीं दिल से जाते हो या मजबूरी से जा रहे हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम देखो रेगुलर हैं, आस्तिक तो हैं कम से कम। अच्छा चलो मुसलमानों की शूटिंग नहीं करते हैं, वो तो विधर्मियों में बहुत पावरफुल धर्म है। जो चौथे नंबर का धर्म है क्रिश्चियन धर्म, वहां गिरजाघर में कब जाते हैं?
संडे
संडे जाते हैं। तो यहां शूटिंग कर रहे हैं, संडे संडे जरूर जाएंगे, वो भी इसलिए कि नौकरी धंधा में संडे को छुट्टी मिल जाती है, नहीं तो वो भी नहीं जाते। तो या तो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, बढ़ रही है कि नहीं, या तो क्रिश्चियंस की संख्या बढ़ रही है, है? अरे प्रैक्टिकल में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है?
बढ़ रही है।
जैसी यहां रिहर्सल होगी वैसा वहां प्रैक्टिकल में ब्रॉड ड्रामा में होगा तो जरूर। डायरेक्टर तो आया हुआ है जो पर्दे के पीछे से सब देख रहा है, रिहर्सल करा रहा है। तो गीता में पहले ही लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्मा विभागश है। क्या कहा है? चार वर्णों की रचना आत्माओं के, ब्राह्मण आत्माओं के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जैसा जैसा जो पार्ट बजाते हैं, मैंने कलपूर्व ही रचना कर दी थी और अभी भी कर रहा हूं। क्या कोई पक्के ब्राह्मण बन रहे हैं? नहीं समझ में आया? क्या बन रहे हैं? पक्के 16 कला संपूर्ण ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मण भी जो पक्के बन रहे हैं उनमें भी दो प्रकार के हैं, एक है ब्राह्मण 16 कला संपूर्ण बनने वाली देवात्माएं जो उतरती कला की शूटिंग करती हैं, जैसे राधा कृष्ण इंद्रियों से एक दूसरे को देख रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों से देह का अंग हैं, देह विनाशी या अविनाशी? देह विनाशी, तो देह की ज्ञान इंद्रियां आंखें भी विनाशी। विनाशी आंखों से जो कर्म करने वाले हैं या सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं, भले प्यार का पार्ट बजाते हैं ज्ञान इंद्रियों से, प्यार कोई खराब चीज नहीं है, और अब व्यभिचारी प्यार भी बजाते हैं, लेकिन फिर भी उतरती कला में जाते हैं یا چڑھتی کلا میں جاتے ہیں؟ ہاں اگلے جنم میں ان کی چوتھائی کلا کم ہو جاتی ہے. کیوں ہو گئی؟
سکھ لے رہے ہیں اندریوں کا.
کیونکہ کرم اندریوں کا نہ صحیح, برشت اندریوں کا نہ صحیح, شیشٹ اندریوں میں بھی جو شیشٹ سے شیشٹ اندری آنکھ ہے, دیہ کا انگ ہے, بناشی دیہ کا انگ, اس کا سکھ لے رہے ہیں. شوٹنگ کہاں کی؟ سنگم یوگ میں انہوں نے شوٹنگ کی ہے, ریہرسل کی ہے. اس لیے بناشی اسٹیج والی آتمائیں ہیں. کیا اسٹیج اویناشی ہے یا بناشی ہے؟ جو بناشی ہے وہ سدا کال ہے, یا جو اویناشی ہے وہ سدا کال ہے؟ جیسے گیتا میں کہا نا ستو ودیتے بھاو نا بھاو ودیتے ست, جو ست ہے سچا ہے اس کا کبھی بناش نہیں ہوتا. تو دیکھو اونچی شرینی والے سولہ کلا سمپورن بننے والے دیو آتماؤں میں بھی دو حصے ہو گئے. ایک ہے ستیوگ میں رادا کرشن جیسے بچوں کے روپ میں جنم لینے والے جو دیہ کی شیشٹ اندریوں کا سکھ لیتے ہیں. دیہ کو سکھ لینے سے بناشی سکھ ہوتا جاتا ہے. اور دوسرے ہیں ان رادھا کرشن جیسے بچوں کو ستیوگ کے فرسٹ جنم میں جنم دینے والے. کون ہے؟ جنم دینے والے لکشمی نارائن جیسے بچے جو ڈر سے ڈائریکٹ نارائن بنتے ہیں, ناری سے ڈائریکٹ لکشمی بنتے ہیں. ایسی شیشٹ آتما ہے یتھا راجا تتھا پرجا. وہ کون سا پرسارتھ کرتے ہیں جو جنم جنمانتر امنگ اتساہ میں رہتے ہیں؟ ان کا امنگ اتساہ کبھی چھین ہوتا ہی نہیں. بھلے دویت وادی دواپر یوگ سے ودھرمی دھرم پتاؤں کے فالوورس کے روپ میں کتنے بھی پاورفل آکرانتائیں وشو وجے کی آکانکھا لے کر بھارت میں آئے ہوں, وہ بھی ان کے سامنے آ کر کے ہار کھا کے جاتے ہیں. جیت پا کے جاتے ہیں یا ہار کھا کے جاتے ہیں؟ ہار کھا کے جاتے ہیں. اتنا ان کے اندر امنگ اتساہ رہتا ہے. اس کو باپ کہتے ہیں روحانی ملٹری. کیسی ملٹری؟ روحانی ملٹری. دنیا میں بھی کسی دیش میں چلے جاؤ, سب سے جاتی دنیاوی سرکاریں بھی کون سے ڈپارٹمنٹ میں خرچ کرتی ہیں؟ ملٹری میں سب سے جاتی راجیہ کا خرچہ کیا جاتا ہے. ملٹری والوں کو بڑا سکھ سویدھائیں دی جاتی ہیں. مرتیو کے بعد بھی ان کے پریوار والوں کو جتنی سکھ سویدھائیں دی جاتی ہیں, مانیتا دی جاتی ہے, دوسروں ڈپارٹمنٹ والوں کو نہیں دی جاتی. وہ ہے جسمانی ملٹری اور یہ ہے روحانی ملٹری. اور اس روحانی ملٹری کا مارشل برہما مکھ سے بولا ہے, جسے ہم مرلی کہتے ہیں, بھکتی مارگ میں وید وانی کہتے ہیں. وہ وید وانی کیا کہتی ہے؟
شنکر ہے.
شنکر یادو تھا. کیا यादव का मतलब भी है मिक्स। शंकरण का अर्थ क्या है? मिक्स। बाप कहते भी हैं ब्रह्मा मुख से, मुरलियों बोला है ना, मैं विदेशी बनकर के आता हूँ। क्या बनकर के आता हूँ? बनकर के आता हूँ, बनकर आता हूँ, हूँ नहीं। अरे विदेशी हूँ या नहीं हूँ? हैं? विदेशी नहीं हूँ। समझदार बच्चे जो हैं, वो इशारे की भाषा समझ लेते हैं। मैं विदेशी नहीं हूँ, लेकिन विदेशी बनकर आता हूँ। जो मैं बनकर के आता हूँ, उस फल की यादगार है क्या? है? जो मैं बनकर के आता हूँ, उस की यादगार है नारियल। ना रियल माने रियल पार्टधारी नहीं है। कैसा पार्टधारी है? अनरियल पार्टधारी है। उस अनरियल पार्टधारी के लिए वाणी में ही बोल दिया, बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। कोई कहे ऐसा पार्ट बजाने की क्या जरूरत, तो बाप कहते हैं मैं विदेशी बनकर ना आता तो तुम बच्चों से, क्या कहा, मैं तुम बच्चों से मिल भी ना पाता। इन बच्चों से नहीं, इन माने किन? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स जो कुख वंशावली कहे जाते हैं, उनके लिए नहीं बोला, उन बच्चों के लिए नहीं। किन के लिए? उन माने किन? जो विदेशी धर्म वाले हैं या विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जीवन रहते ही कन्वर्ट हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए नहीं। क्या? किन बच्चों के लिए? तुम बच्चों के लिए विदेशी बनकर आता हूँ। हम बच्चों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो बहुरूपिया बन के आ जाते हो? है? अरे कहते भी हैं तुम बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, वो तो बहुत दूर हैं, दूसरे धर्मों में वाले या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे बेचारे सर उसमें आ जाते हैं, संदेह में आ जाते हैं। क्या ये क्या बात हुई? हमको कह दिया मेरे बच्चे। बच्चे सोचते हैं हम बच्चों में तो कोई गुण नहीं है ऐसा, जैसे गुण ब्रह्मा में देखने में आते हैं, जैसे गुण ब्रह्मा कुमार कुमारियों में देखने में आते हैं, जिन गुणों को देख करके सारी दुनिया उनके ऊपर आकर्षित हो जाती है। हमको और हमारे कर्मों को देखकर कोई आकर्षित नहीं होता है। लोग आते हैं हमारे मिनी मधुबन कहे जाने वाले घर में, मिनी मधुबन मधुबन मधुसूदन का घर, आते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं और ये तो आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे बंदर किलकारियां मार के लड़ते हो। तो इस बात का हम बच्चों को भी एहसास होता है क्या कि हमारा उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। दुनियावी जो सन्यासी हैं, साधु संत महात्माएं हैं, उनके गुणों का असर पड़ जाता है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी असर पड़ जाता है, वहां ढेर के ढेर आकर्षित हो जाते हैं। और हम कहते हैं हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे, हमारे ऊपर कोई आकर्षण ही नहीं होता उनको। तो हमारे दिल में आता है, क्या आता है बच्चों के दिल में, मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। परंतु बाप कहते हैं अरे तुम बच्चों में कोई गुण हो या ना हो, भले हो सारे गुण दुनिया वालों में हो, वो सारे गुण दुनिया के साधु संन्यासियों में हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वालों में हो, लेकिन मैं तो समझता हूँ, कौन समझता है, शिव बाप समझते हैं कि मेरे लिए तो तुम ही बच्चे हो मेरे असली, क्योंकि तुम बच्चों ने ही मुझ बाप को पहचाना है, दुनिया वालों ने नहीं पहचाना, दुनिया के साधु संत महात्माओं ने भी नहीं पहचाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वालों ने भी नहीं पहचाना। तो इसलिए तुम बच्चों में कोई गुण हो या न हो, मैं तो तुम बच्चों को ही प्रेफरेंस देता हूँ, मैं तुम बच्चों के आदिकाल के सात्विक गुणों को देखता हूँ। क्या तुम बच्चे मैं आत्मिक रूप में देखता हूँ ना, है? तो आत्मिक रूप में जब मैं तुम बच्चों को देखता हूँ तो आदिकाल का तुम्हारा जो रूप है वो मेरी बुद्धि में रहता है, जानता हूँ ये संग के रंग में आकर के बिगड़ गए। कोई कहे अरे भगवान इतना सर्वशक्तिवान, वो सर्वशक्तिवान बाप इनका बाप और बच्चे बिगड़ गए, बाप भी इन बच्चों को नहीं सुधार सका, कंप्लीट नहीं बना सका। बाप कहते हैं ये मेरे बहुत पुराने बच्चे हैं। क्या बहुत पुराने बच्चे हैं जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना में मेरे सहयोगी बनते हैं, बहुत दिनों के बाद ये मुझे मिले हैं। सबसे पहले 500-700 करोड़ की दुनिया में ये बच्चे मेरे से बिछड़े थे। क्या कौन बिछड़े थे, ये बच्चे ही मेरे से बिछड़े थे। तो 500-700 करोड़ की मनुष्यों की दुनिया में सबसे जास्ती ओल्ड मनुष्य आत्माएं कौन सी हुई, जो पहले पहले बिछड़े वो ही ओल्ड सो गोल्ड हैं। क्या क्या है, ओल्ड सो गोल्ड। दूसरे धर्म के बच्चे जो बाद में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मलोक से उतरते हैं वो मेरे बच्चे डायरेक्ट बच्चे नहीं बनते, मेरे से डायरेक्ट राजयोग नहीं सीखते। किसने कहा? शिव बाप ने कहा। शिव बाप योगी है? योगी नहीं है तो योगेश्वर है, योगी नहीं है तो योगेश्वर भी नहीं है। जो योगी है बड़े से बड़ा, उसी को शास्त्रों में योगेश्वर कहा है, योगियों का ईश्वर। क्या? और भक्ति मार्ग में बेचारे भक्तों ने, क्योंकि कोई कोई भक्त हैं जो कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई कोई भक्त हैं जो शंकर को भगवान मानते हैं, है या नहीं? कोई कोई बच्चे हैं जो ब्रह्म समाजी हैं, ब्रह्मा को ही भगवान मानते हैं, ब्रह्म महापुराण को सबसे अच्छा पुराण मानते हैं। क्या तीन देवताएं हैं ना ऊंचे ऊंचे हैं कि नहीं? तो कोई ब्रह्मा के पक्के फॉलोअर बन गए, कोई वैष्णव पंथी बन गए, कोई शंकर के फॉलोअर। एक लिंग स्वामी की जय बोलेंगे। किसकी जय बोलेंगे? एक लिंग स्वामी। सारा जीवन उसी की मान्यता देंगे। तो देखो ये रिहर्सल कहाँ होती है? संगम युग में ये रिहर्सल होती है। तीन देवताओं की प्रैक्टिकल में रिहर्सल होती है। वो तीनों ही देवताएं अपने अपने फॉलोअर्स संगम युग में तैयार करते हैं। यहाँ रिहर्सल करते हैं फॉलोअर्स बनाने की, और वहां ब्रॉड ड्रामा में प्रैक्टिकल उनकी एक्ट चलती है। तो देखो बाप कहते हैं मैं ऊंची से ऊंच हूं, यह नंबर वार तीन मूर्तियों में से एक हूं। तीन मूर्तियों की तीन पुरियां दिखाई जाती हैं। आज भी भारत के झंडे में उन तीन मूर्तियों रूपी कपड़ों की यादगार, शरीर रूपी कपड़ों की यादगार तीन कपड़े दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा की यादगार हरा कपड़ा नीचे, विष्णु की यादगार सफेद कपड़ा बीच में, और शंकर की यादगार क्रांतिकारी कपड़ा, क्रांतिकारी रंग सर्वोपरि, जो सारी दुनिया में क्रांति लाकर रख देता है। क्या करता है? क्रांति। दुनिया में जो भी दुख दर्द बढ़ जाते हैं कलयुग के अंत में, उन दुख दर्दों की पापों की अंत कर देता है। तो अच्छा कौन है? कौन अच्छा हुआ? जो दुखों का अंत कर दे वो शांति पैदा कर देता है। शांति देवा कहा जाता है। शांति देवा माना कोई देव है, वो शांति देने वाला असल में भगवान नहीं है। कौन है?
भगवान का प्रैक्टिकल रूप है।
भगवान समान स्टेज धारण करने वाला है, शांति का सागर बनता है, वही स्वरूप है जो मुक्ति देने के कारण शांति का सागर कहा जाता है, शांति देवा कहा जाता है, वही देवात्मा। सुख का सागर भी है जो बाप खुद सुख नहीं भोगता वो बच्चों को सुख का वर्षा देगा, जो बाप स्वयं सुख भोगता है अकूट सुख भोगने वाला वो ही बच्चों को अकूट वर्षा दे सकता है, और वो अकूट वर्षा है जो गोपियों के लिए गाया हुआ है। क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जिन गोप गोपियों ने उस एक बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़े हैं, जिन गुप्त संबंधों के राज को दुनिया नहीं जानती, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं जानते, वो राज बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा नहीं जान सकती। कौन है बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों की दुनिया में? दादा लेखराज ब्रह्मा। जो स्वयं बच्चा बुद्धि है वो पैदाइश भी कैसों की करेगा, बच्चा बुद्धियों की पैदाइश करता है। शिव बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को पूरी 100% जीवन मुक्ति देता हूं, माना पूरे 84 जन्मों की जीवन मुक्ति तुम बच्चे भोगते हो, और धर्म वाली आत्माएं नंबर वार हैं, वो भी जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। पहले भारतवासी देवात्माएं थी या नहीं थी? द्वैतवादी द्वापर युग आने से द्वैतवादी धर्म और राज्य स्थापन करने के लिए जब विदेशी विधर्मी धर्म पिताएं आए तो कन्वर्ट हो गए, उनके प्रभाव में आ गए, प्रभावित हो गए, माने उनकी प्रजा बन गए। सवाल होता है भारतवासी दूसरे धर्म में क्यों कन्वर्ट हुए, दूसरे धर्म की आत्माएं कभी क्यों नहीं कन्वर्ट होती है?
भारतवासी सबसे पुराने हैं?
नहीं,
भारतवासी
बातों
पर भी बात करते
कारण
कारण है पूरा पूरा नहीं उठाते
ज्ञान, नहीं पूरा पूरा उठाते, क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि भारत है ही मातृ प्रधान देश, पुरुषों के मुकाबले माताएं जास्ती प्रभाव में आती हैं, बरगलावे में कन्याएं माताएं भारत की ज्यादा आती हैं, जब विदेशी आते हैं है? कन्याएं माताएं जास्ती प्रभाव में आ जाती है और पुरुष जाति की पहली पहली प्रजा बनती ही है माता। कौन? بچے بچیاں تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں، پہلی کرتی پرش کی کیا ہے؟ کرتی میں نے رچنا، پہلی رچنا ماتا، چاہے کنیا کے روپ میں ہو چاہے ماتا کے روپ میں ہو، وہ پہلی پہلی رچنا ہے. رچنا زیادہ پاورفل ہوتی ہے یا رچیتا زیادہ پاورفل ہوتا ہے؟ تو دیکھو پرش ہے رچیتا، پرش ہوتا ہے باپ، اور جو پہلی رچنا رچتا ہے ماتا وہ ہے رچنا. بعد والی چیز یا پہلے والی؟ بعد والی. تو کمزوری سوبھاؤ سے ہوتی ہی ہوتی ہے. کوئی پوچھے یہ کمزوری کا فاؤنڈیشن کہاں سے پڑا؟ ہر بات کا فاؤنڈیشن کہاں پڑتا ہے؟ کیسے ہے؟ اچھا، جگدمبا مانے سارے جگت کی امبا، مانے اس کا دوسرا نام دو برہما، بڑی اما، بڑی تھی بڑی اما ہے یا نہیں؟ تو سارے جگت کی جو بڑی اما کہی جاتی ہے جگدمبا، وہ اول نمبر کی اما ہے، برہما ہے، یا بعد والے نمبر کی برہما ہے؟ بعد والی ہے.
آتمک روپ میں تو اول نمبر برہما،
برہما کبھی آتمک روپ دھارن ہی نہیں کرتا. سیجن کی ابھیکت وانی میں 5 دسمبر کے لیے کیا بولا؟ بھول گئے کیا ہے؟ بچوں نہیں، باپ اور بچے کا ملن، پہلی پہلی بار اوریجنل آتمک اسٹیج کے روپ میں 5 دسمبر 1969 کو ہوا تھا. 18 جنوری باپ دادا جسے کہا جاتا ہے، وہ 18 جنوری اسمرتی دیوس مت کہو. اصلی اسمرتی دیوس کون سا ہے؟ دیہداریوں کے ملن کو، دیہداری آتماؤں کو ملنا، وہ اصلی ہوا یا جو آتمک اسٹیج میں استھت ہونے والی آتمائیں ہیں 100% ان کا میل اصلی میل ہے؟ جو آتمک اسٹیج میں ملتے ہیں وہ ملن اسمرتی دیوس اول نمبر کہا جائے گا. بچے سمجھتے ہیں کہ رام اور کرشن والی آتمائیں جو دیہداری آتمائیں ہیں ان کا میل، جنہیں سمجھتے ہیں کہ یہ باپ دادا ہیں ایور لاسٹنگ، تو دیہداری باپ دادائیں اصلی باپ دادائیں کہے جائیں یا آتمک اسٹیج میں ٹکنے والی آتمائیں اور ان آتماؤں کے بیچ میں بڑا بھائی اور آتماؤں کا باپ شیو باپ، شیو باپ اور آتمک روپ میں پارٹ بجانے والی آتماؤں میں بڑا بھائی کون؟ رمیتے یوگینو یسمینیتی رام، یوگی لوگ جسے یوگیشور میں رمن کرتے ہیں، याद में रमण करते हैं, स्मृति में खेलते हैं, सुख की स्मृति में खेलते हैं, शांति की स्मृति में खेलते हैं, सुख के झूले में झूलते हैं, लेकिन आत्म की स्मृति में वो बाप मनुष्य आत्माओं का बाप और साथ ही मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई क्या कहा जाता है, दादा कहा जाता है, वो है आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच दादा और आत्माओं का बाप बाप हुआ। जिनकी बुद्धि में ये राज बैठता है वो बच्चे हैं मेरे आत्मिक स्टेज में रहने वाले, जो इस बात को जल्दी समझ जाते हैं कि असली बाप दादा कौन सी आत्माएं हैं, कौन सी आत्माएं हैं,
राम बाप और शिव बाप।
हाँ, मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच में मनुष्य आत्माएं जो आपस में भाई भाई हैं, उनके बीच में जो बड़ा भाई है आत्मिक रूप में, और उस बड़े भाई का भी बाप कौन, जिसका कोई बाप नहीं, वो है बाप शिव बाप। और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो आत्मा हुई दादा। ये है ओरिजिनल आत्मिक स्टेज के बाप दादा का मिलन। ये मनुष्य सृष्टि में 5000 वर्ष में ये प्रैक्टिकल स्टेज धारण करने वाली आत्मिक स्टेज वाली दो आत्माएं 5 दिसंबर को पहली बार मिलन मनाती है। दादा लेखराज के लिए कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे,
क्योंकि उदय बाद में ही थे।
नहीं, वो तो है,
किसी उनका बना ही नहीं।
नहीं, क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं। बाप को पहचानेंगे कि ये सुप्रीम सोल बाप है, सामान्य रूप से जान लिया हम बिंदी बिंदी आत्माएं, और बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। लेकिन कौन सा ज्योति बिंदु, उसकी पैक्यूलरिटी क्या, कैसे पहचाने कौन सा ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर, साकार रूप में जो हैविन दुनिया बनती है उसका रचयिता बाप, जो अंग्रेजों में गाया हुआ है हैविनली गॉड फादर। किस लिए गाया हुआ है, हैविन का रचयिता है, वो हैविन का रचयिता बाप मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है, माना दादा है, और उसका भी बाप शिव बाप, वो ऊंचते ऊंच बाप है, जिसका कोई आत्मा बाप नहीं। तो देखो, शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं कि शिव बाप देते हैं, क्या फर्क है दोनों में, शिव बाप और शिव बाबा में, मुरली में क्या बताया, मुरली में बताया साकार और निराकार। क्या साकार और क्या निराकार, अरे आत्माओं के बीच में जो सदा निराकार है वो निराकार। क्या आत्माओं के बीच में ऐसी आत्मा जो इस साकार सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी आकर पार्ट बजाती है तो भी सदा निराकारी स्टेज में रहती है या साकारी बन जाती है? सदा निराकारी स्टेज में रहती है। वो निराकार रहने वाली सदा शिव की आत्मा और मनुष्य आत्माओं के बीच में वो देहधारी आत्मा जो निराकारी बनते हुए भी निराकारी स्टेज धारण करते हुए भी देह रूपी साकार लिंग में रहती है या नहीं रहती है? तो यादगार में जो शिव के सारी दुनिया में सार्वभौम मंदिर बने हुए हैं उनमें लिंग को साकार रूप में हाथ पांव नाक आंख क्यों नहीं दिखाई जाते? क्योंकि मन बुद्धि से स्टेज ऐसी बनाई हुई है जिस स्टेज में इंद्रियों का भान, इंद्रियों की याद, स्मृति ही नहीं है। नष्टो मोहा। काहे से नष्टो मोहा? देह से नष्टो मोहा, याद ही नहीं करना है। मोह लगा रहेगा तो याद आएगा, देह से मोह नहीं तो याद भी नहीं आएगा। अपनी देह से मोह, देह के संबंधियों से मोह, देह के लिए जिन पदार्थों की जरूरत है उन पदार्थों से भी मोह टूट जाए तब कहेंगे नष्टो मोह। ऐसी नष्टो मोह की नंबर बार स्टेज धारण करने वाले तुम बच्चे हो। नंबर बार क्यों कहा? कि तुम बच्चों में से कोई अब्बल नंबर बनता है नष्टो मोह, कोई मध्यकाल में बनता है वो भी नंबर बार, कोई एकदम अंतकाल में जब इस सृष्टि का महाविनाश शुरू हो जाता है, महामृत्यु सामने खड़ी हो जाती है, तब आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाता है। देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से और देह के जिंदगी में संपर्क में आने वाली आत्माओं के स्मृति से परे चला जाता है। ऐसे स्मृति से परे चले जाने वाली मनुष्य आत्माओं के बीच में जो अब्बल नंबर है, अब्बल नंबर शिव बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज बनाने वाला है वो साकार भी है और इस सृष्टि पर निराकार भी है, इसलिए शिव बाबा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि स्टेज से निराकारी बन गया तो कोई साकार शरीर उड़ जाता है इस दुनिया में से। उड़ जाता है? नहीं उड़ जाता है, इसी सृष्टि पर वो साकार बड़ा रूप रहता है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, मुरली में बोला है, क्या छोटा रूप नहीं याद आता, बिंदु रूप याद नहीं आता तो क्या करो, बड़े रूप को ही याद करो। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं बड़े रूप को याद करने में सहज मानेंगी या निराकारी ज्योतिबिंदु को याद करने में सहज मानेंगे, क्योंकि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं इस दुनिया में आती हैं, तो साकार शरीर के द्वारा सुख भोगती हैं। इसलिए साकार उन्हें जल्दी याद आता है। जन्म जन्मांतर का अभ्यास है या नहीं है साकार को याद करने का? इसलिए दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं उस साकारी स्वरूप को अंत में याद करेंगी, जो साकारी स्वरूप दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख में शिव बाप जब बोलते हैं, या कोई भी ब्रह्मा के मुख में शिव बाप बोलते हैं, तो ब्रह्मा वाली आत्मा जो अव्वल नंबर परम ब्रह्म कही जाती है, वो इंटरफियर करके बोल सकती है या नहीं बोल सकती? बोलती है। वो आत्मा कहती है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या समाया हुआ है? और सबके मन में जो भी 500 करोड़ मनुष्य मात्र 700 करोड़ हैं, उनके मन में तो कोई न कोई अलग अलग समाया हुआ है। पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी कोई किसी को याद करता है, कोई किसी को याद करता है। भले शिव बाप को, ज्योतिबिंदु को अमृत वेले याद करने बैठते हैं, तो भी ज्यादा समय कौन याद आ जाता है? कोई न कोई मायावी रूप में साकार रूप याद आ जाता है, बार बार याद आता है, हिसाब किताब लेने आ जाता है। और शिव बाप तो भूल ही जाता है, क्योंकि ज्योतिबिंदु है। लेकिन शिव बाप जिसमें प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है मुकर्र रूप से, वो साकार भी भूल जाता है। जिसके लिए बाप कहते हैं, कौन सा बाप? शिव बाप कहते हैं, अरे तुमको निराकारी ज्योतिबिंदु छोटा रूप याद नहीं आता है, तो क्या करो? बड़े रूप को ही, लिंग रूप को ही याद करो। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जिन्हें वो लिंग रूप भी, वो चेहरा भी याद नहीं आता। टीवी में रोज देखेंगे, उस मुख से वाणी भी रोज सुनेंगे, संगठन में आकर सुनेंगे, घर में सुनेंगे, काम करते करते टेप रिकॉर्डर से कानों में सुनते रहेंगे। और सन्मुख भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं आता है। ये क्या कारण है?
पूरा निश्चय नहीं रहने के कारण।
क्यों निश्चय नहीं है? दूसरों को निश्चय बैठ सकता है, तो उनको निश्चय क्यों नहीं बैठता?
बातों में लगे रहते हैं।
अरे वो तो सारे ही भारतवासी हैं। ऐसा भारतवासी कौन है जिन भारतवासियों ने, या जिस भारतवासी ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। अरे क्या भारतवासियों में जो सबसे ऊंची हीरो पार्टधारी आत्मा है, वो इस बात की मरीज नहीं है? है या नहीं है? दुर्गति को पाती है या नहीं जा पाती है? सबसे जास्ती दुर्गति को पाती है या कम दुर्गति को पाती है? माने सबसे जास्ती सबकी बातों पर विश्वास कर लेना, ये कौन सी आत्मा है जो सब भारतवासियों का भी बाप है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले जो भी भारतवासी हैं, जो दुर्गति को पाते रहते हैं द्वैतवादी युग से, उनमें नंबर वन कौन है? जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है, जिसका मुकर्रर रथ है महाविनाश में भी खत्म नहीं होता, सारी दुनिया में प्रलय काल माना जाता है, प्रमाणे प्रकृष्ट रूपेण लय माने लीन, सारे संसार के जड़ जंगम जो भी है प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, ये प्राणी है या नहीं है? ये भी पौधे प्राणी है लेकिन जड़त्वमयी है, सब लीन हो जाते हैं। किस में लीन हो जाते हैं? जो बोलता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तेरे मन में क्या है? तेरे मन में एक शिव, दूसरा ना कोई, एक ज्योति बिंदु है। निसंकल्प स्टेज कहेंगे या संकल्पों का अंबार कहेंगे ज्योति बिंदु स्टेज को? एक संकल्प ज्योति बिंदु, दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं, सभी प्राणी मात, सभी जड़ जंगम एक ही स्टेज में समा जाएंगे। किस स्टेज में? निसंकल्प स्टेज। बाप का चेहरा उन्हें याद रहेगा, बाप के चेहरे में जीवंत चेहरा याद रहेगा, या आंखें मुर्दे की तरह बटन दिखाई देंगी? जीवंत चेहरा दिखाई देगा। जो तुम बच्चों से भी बाप कहते हैं, क्या तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा? अरे नया नहीं, इतने छोटे बच्चे, देह अभिमानी, इतनी बड़ी देह, देह अहंकार में रहने वाले आंखों पे कैसे बैठेंगे? ज्योति बिंदु बनकर बैठेंगे या बड़े देह के रूप में बैठेंगे? ज्योति बिंदु बनकर के बैठेंगे, जो बनेंगे वो बैठेंगे, जिस नंबर में बनेंगे उस नंबर में बैठेंगे, बाप के नैनों में बैठेंगे। जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, नंगा रूप दिखाया है या कपड़े पहने हुआ दिखाया गया है? साकार शरीर का वस्त्र नहीं दिखाते हैं, फिर भी साकारी है, इसलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति है या नहीं है? अमूर्त नहीं है, अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति तो है, वास्तव में है, लेकिन वो हाथ पांव नाक आंख कान जो मूर्ति में देखने में आते हैं देवताओं के, वो मूर्ति देखने में नहीं आती। कौन सी आंख से? तीसरे नेत्र से जो देखने वाले बनते हैं आत्मिक स्टेज वाले, उनको बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जैसे क्राइस्ट बुद्ध गुरु नानक का चेहरा देखने से सबको अनुभूति होती है कि उनकी आत्मा इस दुनिया में नहीं है, वो दृष्टि वो आंखें कहाँ टंगी हुई हैं? हैं? निराकार स्टेज में आत्मलोक में आत्म की स्थिति में टिकी हुई है। वो तो धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स मात्र कहे जाते हैं, लेकिन इस सृष्टि पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कोई कहा जाता है, वो है ग्रैंड फादर जो लिंग के रूप में दिखाया जाता है शिव के मंदिरों में, अव्यक्त मूर्ति ना, जिसके लिए गीता में शब्द आया है कि सारी दुनिया की जड़ जंगम आत्माएं ज्योति बिंदु आत्माएं, चाहे वो चीटी की आत्मा हो, कीटाणु की आत्मा हो, मनुष्य की आत्मा हो, हाथी की आत्मा हो, व्हेल और सील मछली की आत्मा हो, जड़ पौधों की आत्मा हो, वो सभी आत्माएं जिन्हें प्राणी कहा जाता है, प्राण धारण करने वाले उस सभी प्राणी मात्र की आत्माएं उस एक अव्यक्त मूर्ति में मनमना भाव होकर निसंकल्प होकर ज्योति बिंदु रूप में समा जाएंगी। 500-700 करोड़ मनुष्यों के अंदर भी कोई दूसरा संकल्प नहीं चलेगा, चलेगा नहीं तो आज क्या देखने में आता है, 500-700 करोड़ मनुष्य है, सबके अंदर अलग अलग प्रकार के संकल्प चलते हैं या एक ही प्रकार का संकल्प है? है ऊपर जरूर देख लो, क्योंकि ऊपर बहुत प्यारी चीज रखी हुई है, देख लो, देखो देखो गर्दन टेढ़ी करके देखो क्या हो रहा है, वो देखना जरूरी है। बड़े अच्छे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट कहते हैं अपने को, हमें ईश्वर पढ़ाता है, बुद्धि फट से विचलित हो जाती है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। क्या बोला, क्या बोल रहे थे? हाँ, दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो वर्तमान समय में देखी जा सकती हैं, पूछा जा सकता है एक एक से कि सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं या एक संकल्प चलता है, वो सारी मनुष्य आत्माएं और उनका मन जो 11वीं इंद्रिय कहा जाता है वो एकाग्र हो जाएगा। किसमें एकाग्र हो जाएगा? एक अव्यक्त मूर्तिना, वो ही शिवलिंग जो भारत में पूजा जाता है, विदेशों में भी पूजा जाता है, विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उन सभी खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियों की संख्या सबसे जास्ती मिली है। इस समय की यादगार है, है उसी वर्तमान समय की यादगार है जो महाविनाश, जो अंतिम महामृत्यु अभी सारी दुनिया के सामने खड़ी हुई है। उस समय इसे दुनिया की सारी मनुष्य आत्माएं ऐसे ही सागर में बुलबुलों की तरह जैसे सन्यासी कहते रहे, पवित्र थे, पवित्र सन्यासी शंकराचार्य ने बोला। क्या बोला था, क्या बोला था? हम आत्माएं एक सागर के बुलबुले हैं, बुदबुदे स्पाइसेस, छोटे बड़े। जो बुदबुदे सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं, उनकी कल्पना ने सही कल्पना की या गलत कल्पना की है? सही की। उदाहरण देने के लिए सही कल्पना है, लेकिन वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि सागर खारा है और सागर से निकलने वाले बुलबुले वो भी खारे हैं। ढेर बुलबुलों को इकट्ठा बुदबुदों को किया जाए तो उनका पानी खारा होगा या मीठा होगा? खारा ही होता है। परंतु वो ज्ञान सागर सदैव खारा नहीं है। क्योंकि बाबा खुद बताते हैं हम बच्चों को, और प्रैक्टिकल में है भी ऐसा ही कि इस दुनिया में सागर जिसका मिसाल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है शिव बाबा से, वो सागर कहीं खारा भी है, मोस्टली खारा है, लेकिन कहीं कहीं मीठा सागर भी है, मीठी धाराएं भी बहती हैं सागर के अंदर, मीठा पानी आता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से पिघलकर डिस्टिल्ड वाटर आता है, सागर के अंदर धाराओं के रूप में बहता है। कहां से आता है पानी, मीठा पानी? अरे है, बर्फ के पहाड़ से निकलकर आता है। वो नॉर्थ पोल बर्फ का पहाड़ कहो या दुनिया का ऊंचे से ऊंचा हिमालय पहाड़ कहो, दोनों जगह बर्फ ही बर्फ जमी हुई है या नहीं है? वो किसकी यादगार है? हाँ, वो ब्रह्मा बाबा ऊंची आत्मा है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पत्ते का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, लेकिन बुद्धि का जो ज्ञान जल है वो बर्फ की तरह जाम है, पत्थर बना हुआ है या पिघला हुआ है? पत्थर की तरह जाम है। इसलिए बोला ब्रह्म वाक्य में ही, बोला मुरली में ही, बोला शिव बाप ने, याद है क्या बोला है? नहीं, वो तो है, बोला किसी को याद नहीं आ रहा है? बच्चा बुद्धि है। क्या है ये ब्रह्मा? बच्चा बुद्धि है। व्यक्ति का पहला पहला पत्ता जरूर है, लेकिन पहला पत्ता होते हुए भी बाप का बच्चा बुद्धि ऐसा बच्चा है
जो बच्चा बुद्धि होने के कारण
शिव बाप की बात के राज को क्या समझता ही नहीं है, इसलिए सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता है। बोलो आता है या नहीं आता है? अभी अभी शंकर के मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा के रूप में विराजमान है, सारा ज्ञान सुनता है। जो शास्त्रों में गायन है कि जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान विराजमान होते हैं। जो हनुमान पवन पुत्र कहा जाता है, जैसे हवा दौड़ने में बड़ी तेज होती है, ऐसे वो मन रूपी ब्रह्मा बहुत तेज दौड़ जाता है। अभी अभी यहां तो अभी अभी विलायत में जा सकता है। ऐसी आत्मा जो घंटों जगत पिता के मस्तक पर बैठ करके ज्ञान सुनती है, ज्ञान की सभा में राम कथा सुनती है, हटती ही नहीं क्या, ऐसे जकड़ के बैठती है जैसे गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ हो। कैसे जकड़ लेती है, है? जैसे गले पड़ जाती है, कहते हैं ना, अरे ये तो हमारे गले पड़ गई। वो आत्मा जो सबसे जास्ती ज्ञान की चातक है, मुरली में बोला सबसे जास्ती किनके कान सुनते हैं, ब्रह्मा के कान सुनते हैं। यहां तक के मुसलमानों में भी जो कथा बनाई है जिसका जिक्र मुरली में आया है, हातिम ताई, वो कहानी बहुतों ने सुनी होगी, देखी होगी, देखी या नहीं किसी ने देखी है? उस हातिम ताई की प्रसिद्ध कहानी में जो हीरो पाटधारी का सहयोगी है, विशेष सहयोगी भागीदार है पार्ट बजाने में, उसको बड़े बड़े काम दिखाए गए, नहीं देखा किसी ने, नहीं देखा? हाँ, और गणेश को भी बड़े बड़े काम दिखाते। वो गणेश किसका बच्चा दिखाया है शास्त्रों में, है? हाँ, जगत पिता का बच्चा दिखाया है, जिसको दुनिया शिव बाबा नाम कह देते हैं, समझते हैं शिव शंकर एक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग, अगर एक ही होते तो शंकर शिव भी कहना चाहिए। कहते हैं शंकर शिव, क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े का नाम पहले और छोटे बच्चे का नाम बाद में होता है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा, कभी नहीं कहते परमात्मा परमपिता, कहते हैं नहीं, क्योंकि बापों का बाप परमपिता है, ऐसा पिता जो परे से परे स्टेज में रहता है, जिसकी स्टेज पर कोई नहीं पहुंच सकता, भले वो परमपिता कहता है मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर जाता हूं, लेकिन जो आप समान बनता है वो परमपिता है, होता है नहीं, वो भी अपन को परमपिता नहीं कह सकता। पांचधारी आत्माओं के बीच परम आत्मा हो सकता है, हीरो पांचधारी हो सकता है, लेकिन परमपिता नहीं हो सकता। तो वो शिव बाप कहते हैं, रथ चाहिए मुकर्रर रथ, ऐसा रथ है जिसका नाम ब्रह्मा तो देता हूं लेकिन वो अव्वल नंबर रथ है जिसे मुसलमानों ने अल्लाह अव्वल दीन कहा, इस दुनिया में अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला कौन सा धर्म? सत्य सनातन धर्म। वो सत्य सनातन धर्म में स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वो ब्रह्मा चाहिए। दुनिया में और कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो भल है, कोई भी ऊंचे से ऊंचे देव आत्मा में प्रवेश करता हो लेकिन कभी भी स्वर्ग नहीं बना सकता नरक की दुनिया को। हिस्ट्री में कोई धर्म पिता ने बनाया दुनिया को स्वर्ग बनाया या दुनिया नरक बनती चली गई? नरक बनती चली गई। और जब टोटल नरक बन जाती है रौरव नरक, रौरव का मतलब जैसे नाली में कीड़े रौरियाते रहते हैं एक दूसरे को काटते हुए, ऐसा रौरव नरक बन जाती है। कोई भी आत्मा सत्य धाम से ऐसी नहीं आती जो हिम्मत कर सके सुधार करने की, तब वो आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु उस मुकर्रर रथधारी ब्रह्मा में आता है, जिसको शास्त्रों में सर्वोपरि कहा गया है। किस रूप में? गुरु साकार होता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जिस ब्रह्मा से परे कोई ब्रह्मा नहीं होता। बड़े से बड़ा ब्रह्मा नामधारी तो काम भी करता होगा या नहीं?
करता होगा।
क्या काम करता है?
धर्म की स्थापना और पुराने का विनाश भी करता है।
वो अम्मा ऐसा काम करती है जो आज तक भी ये गाया जाता है कि घर परिवार की अम्मा दरित्री जिसे कहा जाता है, गृहिणी जिसे कहा जाता है, वो अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की दरित्री घर की गृहिणी अगर गंदी है झूठा करती है अपने तन को झूठा कराए देती है अपने मन के संकल्पों को झूठा कराए देती है अपनी वाचा को झूठा कराए देती है दूसरों से, रज रज के एकांत में दूसरों से बात करती है लेकिन क्या माता का पार्ट जो सच्चाई का पार्ट है जो माता स्वर्ग का द्वार खोलने वाली कही जाती है वो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली नहीं बनती। इसलिए बाप इशारा देते हैं जो सुपनखाएं पूतनाएं हैं वो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं दूसरों के सामने, बड़े प्यार से बैठ जाती हैं। आओ इस नरक के दरवाजे में, विचार के दरवाजे में घुसो और नरक की शूटिंग करो, रिहर्सल करो, रिकॉर्डिंग करो। इन वैश्याओं ने ही भारत का नाम बदनाम किया है। बाप कहते हैं जो बापों का बाप है, तुम माताएं तो स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो। क्या तुम्हारे ऊपर देहधारी धर्म गुरुओं ने गलत लांछन लगाए हैं? क्या नारी नरक का द्वार है? वो कहते रहे नारी नरक का द्वार है और मैं इस मुकर्रर रथ में आकर कहता हूं नारी स्वर्ग का द्वार है। वो नारियों को जन्म जन्मांतर छोड़ के भागते रहे और मैं कोई को छोड़ ही नहीं सकता। क्या अपने आप छोड़ के चले जाएं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो नियम बनाया है, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो देखो इस दुनिया की बड़े से बड़ी माता का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है जो दुनिया को नरक से प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाने के निमित्त बनती है? ऐसी धरणी है जिसे कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा, ये सारी दुनिया ऐसा कुटुंब, ऐसा ईश्वरीय परिवार बनेगी जहां सुख ही सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा, एक ही कर्ता धरता होगा प्रैक्टिकल में। वसुधैव कुटुंबकम जहां कहा जाएगा वहां एक कर्ता धरता होगा परिवार का, कुटुंब का, या दो चार होंगे, एक ही होगा। वो एक जो परम पुरुष कहा जाता है। कौन है परम पुरुष? पुरुष माने आत्मा, शिव बाप है परम पुरुष। लेकिन वो कहता है कि मैं अकर्ता हूं, क्या अभोक्ता हूं। जो कहते हैं करणहार हूं और करावनहार हूं, वो मैं आत्मा, आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु नहीं हूं। करणहार और नहीं करते हैं तो करावनहार भी, जबरियन करावनहार भी। कौन है? हाँ, प्रैक्टिकल में मुकर्रर शरीरधारी है, वो माता के रूप में सहज पार्ट बजाने वाला भी है। प्रैक्टिकल में बजाता भी है, इसलिए उसे प्यार का सागर कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्यार का सागर है। 80 साल हो गए वो प्यार के सागर ने जो भी ब्राह्मण सृष्टि रची गई 80 साल के अंदर 3 बार ब्राह्मण सृष्टि रची गई, 36-37 में ओम मंडली के रूप में ब्राह्मणों की सृष्टि, 47 में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के रूप में ब्राह्मण सृष्टि और 76 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सृष्टि, जिसे आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम दिया। ये 3 प्रकार की सृष्टि रची, परंतु वो बाप ने प्यार ही प्यार दिया। कोई नहीं कह सकता कि बाप की कोई बात न मानी हो, तो बाप ने जैसे दुनियावी बाप और पति होते हैं तो क्या करते हैं, पत्नी के साथ धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, ऐसा बाप नहीं करता। क्या? क्योंकि बाप कहते हैं यही नारियां जिसको सन्यासियों ने कहा नरक का द्वार और साबित करके दिखाया दुनिया को, बाप कहते हैं वही नारियां स्वर्ग का द्वार बन सकती हैं और बनती भी हैं। तो शिव बाप ऐसा अगाध प्यार का सागर, परंतु जो प्यार का सागर है माँ के रूप में, परिवार में छोटे बड़े अच्छे बुरे, बुरे ते बुरे, चोर डकैत लुच्चे लफंगे जैसे बच्चों को भी माँ प्यार से अपने पास रखना चाहती है या धक्का देके बाहर कर देती है? ऐसी माताओं के बीच में सर्वोपरि माता का पाठ बजाया, जिसे नाम दिया जाता है काम के आधार पर परम ब्रह्म, वो ही माता के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा फिर जिसके मस्तक पर चंद्रमा बैठा हुआ है, अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा है? अंत तक भी अधूरा पार्ट बजाएगी। अंत तक का मतलब शरीर साकार छोड़ने तक भी अधूरा पार्ट बजाएगी, बजाती है या संपूर्ण पार्ट बजाती है? अधूरा पार्ट बजाती। जो मुस्लिम धर्मों में और इस्लाम धर्मों में आज भी ईद का चांद कह करके पुकारी जाती है, जिसे देखने के लिए वो सब लालायित रहते, वही आत्मा जानती है, देखती है। ऐसा बाप का बच्चा है जो धर्मराज का पार्ट बजाती है। काय का पार्ट? धर्म की धारणाओं का राजा धर्मराज। सबसे बड़े से बड़ी धारणा क्या है? सहन शक्ति। सहन शक्ति का आगार रह करके पाठ बजाया। कोई भी ब्रह्मा कुमार, कोई भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, टेढ़ी नजर से भी देखा। कोई कह सकता हो तो हाथ उठाए, साबित कर सकता हो तो भी हाथ उठाए, एक भी नहीं कहेगा। वो अब्बल नंबर ब्रह्मा दादा लेखराज, अरे दो नंबर ब्रह्मा भी नहीं। दूसरे नंबर ब्रह्मा को उसे कहेंगे जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है ज्ञान का। क्या
प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला?
त्रिमूर्ति में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है पार्वती, वैष्णवी देवी जिसे कहा जाता है, विष्णु देवता के रूप में मानी जाती है। तो वो आत्मा ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में, इंद्रियों में धारण करती है। क्या? इंद्रियों से जो ज्ञान सर्वोपरि शक्ति है। दुनिया की सर्वोपरि शक्ति क्या है? है प्योरिटी नहीं है? प्योरिटी है। प्योरिटी का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली कौन है? वैष्णवी शक्ति, नारायणी। कौन है नारायणी? नारायणी किससे ज्ञान लेती है?
नारायण।
तो बड़ा कौन हुआ?
नारायण।
नारायण बड़ा हुआ ना, जो सदा ज्ञान जल में रहता है, कभी भी अज्ञान जल में नहीं रहता है। तो जो ज्ञान जल में ही रहेगा वो ज्ञानी होगा सदा या अज्ञानी होगा? सदा ज्ञानी होगा तो सच्चा पार्ट बजाएगा या झूठा पार्ट बजाएगा? तो सच्चा पार्ट बजाने वाला वो एक ही सदगुरु है, एक ही आत्मा है, जो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सत गुरु, सच्चा गुरु है, जिसे सिख लोग आज भी मानते हैं। एक सदगुरु अकाल मूर्त। कैसी मूर्त? जिसको काल नहीं खा सकता। काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। वो ऐसी मूर्ति साकार है जिसके शरीर को काल भी नहीं खाता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई भी काल खा ही नहीं सकता। वो दुनिया में सबको खाएगा लेकिन उसको कोई भी नहीं खाएगा। संसार रूपी जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी कौन सा होता है? कौन सा शेर? बबर शेर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लायन। जो लायन टाइगर को आमने सामने की लड़ाई में पराजित कर देता है। क्या? या तो टाइगर शेर का सामना नहीं करेगा, किनारा कर लेगा। ऐसी पावरफुल आत्मा है संसार रूपी जंगल की। कौन? कौन है? लाइन बबर शेर, जो जगदम्बा का क्या है? सवारी है। अब ये तो हिसाब किताब है। कभी जगदम्बा की सवारी बन जगदम्बा की सवारी बनता है और कभी जगदम्बा के मस्तक पर चंद्रमा बन के बैठता है। ऐसा दुनिया में होता है या नहीं होता है?
होता है।
कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप, होता है ना। तो ऐसे ही जो जगदम्बा का सवारी के रूप में दिखाया जाता है, जब जगदम्बा सात्विक स्टेज का पार्ट बजाती है, जिसे दुर्गा कहा जाता है, दुर्गुणों को दूर करने वाली, तो उसके दुर्गुण दूर हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? उसके दुर्गुण महाकाली का काला पार्ट बजाती है तब दुर्गुण दूर होते हैं, या जब सत्व प्रधान पार्ट बजाती है तब दुर्गुण दूर होते हैं? वो सत्व प्रधान पार्ट है महालक्ष्मी। कैसी लक्ष्मी?
महालक्ष्मी,
जैसे महानारायण। दो नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, 16 कला संपूर्ण, जिनकी मंदिरों में, खासकर लक्ष्मी नारायण के बिरला मंदिरों में आज भी पूजा होती है। संपूर्ण नारायणों की पूजा होती है या अपूर्ण नारायणों की पूजा होती है? संपूर्ण नारायणों की पूजा होती है। जो सत्युग में अधूरे नारायण बनते हैं, कम कलम वाले, वो सप्त ऋषियों के रूप में माने जाते हैं। क्या उनके मंदिर नहीं बनते पूजा करने के लिए? क्योंकि वो कलाओं में खंडित नारायण हैं या अखंड नारायण हैं? खंडित नारायण है। 16 कला संपूर्ण बनते ही नहीं। तो जो संपूर्ण नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, विश्वपिता और विश्वपिता का वो बच्चा जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में पहला पत्ता कहा जाता है, कीर्तन में गायन में आता है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कीर्तन करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माने वसुदेव का पुत्र वासुदेव, ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, शिव का फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही शास्त्रों में उसे यादव वंशी वसुदेव का पुत्र कहा, और शंकर के गले में जकड़ करने वाला वासुकी नाग भी कहा जाता है। किसका पुत्र? वसु नाम का नाग, उसका पुत्र वासुकी नाग। तो देखो, ये आत्माएं हैं जिन्हें हमने मानवीय रूप में बाप दादा समझा। भागीदार आत्माएं हैं, हद की दुनिया में भी भागीदार और बेहद के जन्म में भी भागीदार, वो दोनों आत्माओं में जो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म बड़े ते बड़ी माता है, जिसे हेवेनली गॉड फादर भी कहा जाता है। फादर क्यों कहा जाता? जब माता है, जैसे दादा लेखराज पुरुष तन है या स्त्री चोला है, लेकिन जब शिव प्रवेश करते हैं तो क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम क्यों देते हैं? बड़ा बप्पा नाम क्यों नहीं दिया? हाँ, तो इसी तरीके से जो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है सृष्टि के आदि में, क्या जब नई सृष्टि रचने के लिए परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है शिव, तो वो सृष्टि रचने के लिए उस परम पुरुष को क्या चाहिए? माता चाहिए, हैं? माता जिसे प्रकृष्ट रचना कहा जाता है, प्रकृति, कृति माने रचना और प्रमाणे प्रकृष्ट रचना, ऐसी रचना जिसकी शक्ति को कोई भी क्रॉस न कर सके दुनिया में, ऐसी प्रकृति। कोई कहेगा प्रकृति को पांच तत्वों का संघात कहा जाता है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जड़ तत्वों का संघात है प्रकृति, लेकिन गीता में बताया है दो प्रकार की प्रकृति है, एक है जड़त्वमयी प्रकृति पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और दूसरी है चैतन्य प्रकृति पृथ्वी देवता जल देवता अग्नि देवता। वायु देवता का नाम सुना है? देवताएं जड़ होते हैं या चैतन्य आत्माएं होती है? तो ऐसी आत्मिक स्टेज में पार्ट बजाने वाली पावरफुल इस दुनिया की ऐसी पावरफुल आत्माएं हैं, जब तामसी बनती हैं तो दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र, जो चैतन आत्मा होते हैं या जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं, चैतन्य आत्मा होते हैं, कुछ न कुछ बुद्धि होती है, बुद्धि में बड़े तीखे होते हैं। इस सच रूपी रंगमंच पर जितना बाद में आने वाली आत्मा होती है उतनी बुद्धि की ज्यादा तीखी होती है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, विपरीत धर्म, उनमें सबसे जास्ती बुद्धि में तीक्ष्ण कौन सी आत्माएं हैं, कौन से देश की, कौन से धर्मखंड की? रशिया के नास्तिक, जिन्हें रशियंस कहा जाता है, इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने एटमिक एनर्जी दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली रचना कर दी, जिस शक्तिशाली रचना से सारी दुनिया का ध्वंस हो सकता है कई बार, ऐसे बुद्धि के तीव्र। और अभी भी ऐसी आत्माएं उतर रही हैं या नहीं उतर रही? अखबारों में आया था एक 3 साल की कन्या और एक किशोर उम्र तक भी नहीं पहुंचा हुआ कुमार, ऐसी तीव्र गति से कंप्यूटर चलाते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कंप्यूटर मैन उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हर बात का उनसे जवाब ले लो, कोई भी प्रश्न करो फट से जवाब देते हैं। तो बुद्धि में तीखे कहेंगे या लूज कहेंगे? तीखे हैं। तो देखो ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि आत्मा है, जब महामृत्यु का समय होता है तो इस सृष्टि पर उतरती रहती हैं। कितनी तीक्ष्ण होंगी, और वो आत्माएं थोड़े समय में ईश्वरीय ज्ञान को ग्रास्प करेंगी कि लंबा समय लेंगी? रामकृष्ण की आत्माओं की तरह और उनके फॉलोअर्स की तरह लंबा टाइम लेंगी या बहुत शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आत्माओं के बाप को और मनुष्य आत्माओं के बाप को जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टदारी है शॉर्ट टाइम में पहचान लेंगे, और पहचान करके इतनी तीव्र गति से जो बाबा ने बोला है वाणी में ही बोल दिया। क्या बोला? लास्ट सो फास्ट। भले लास्ट में आएंगी, दुनिया की 7 दिन के अंदर महामृत्यु बैठी हुई है, तो भी वो ईश्वरीय ज्ञान की तह तक पहुंच जाएंगे। बाप का जो रूप है कम से कम उसे तो पहचान ही लेंगे। जिसकी याद में लीन होकर उस निराकारी स्टेज को प्राप्त करेंगे। संग का रंग लगेगा या नहीं बुद्धि को?
लगेगा।
जैसा बाप वैसा ही बच्चा बनेगा। बाप निराकारी ज्योति बिंदु, तो वो लास्ट में आने वाली आत्माएं भी क्या बनेंगी? ज्योति बिंदु बन जाएंगी, और निसंकल्प बन करके जो ज्ञान सागर है उस ज्ञान सागर में समा जाएंगी। जिस सागर की था, जिस दुनिया में आज तक भी कोई नहीं ले सका, जो सागर पृथ्वी माता को अपनी गोद में लेकर बैठा है, क्योंकि 3 हिस्सा दुनिया में सागर है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। वो भी जब पृथ्वी नाम पड़ता है, पृथिव्यात विस्तार को पाती है, नहीं तो 2500 साल पहले विस्तार को पाई हुई पृथ्वी नहीं थी। कौन से देश में थी? भारत देश में ही छोटा सा माता का रूप था। जैसे कन्या पहले बहुत हल्की फुल्की होती है ना?
होती है।
फिर क्या होता है? फिर बाद में माता बनती है तो विस्तार को पा जाती है। लेकिन माताएं भी शास्त्रों में 2 गाई हुई हैं, कश्यप की पत्नी के रूप में। कश्य माने योग का तेज, कश्य जिसे काशी शब्द बनता है, पामानी पीने वाला, योग का योग बल का तेज पीने वाला, सृष्टि का आदि पुरुष बताया है, आदि मनु कश्यप, उसको दो पत्नियां थी, एक का नाम दिति, बड़ी पत्नी, बड़ी माने पहले माता के रूप में उसे स्वीकार किया था, और दूसरी का नाम आदिति, आ माने नहीं, दिति माने खंडित, आदिति माने जो कभी खंडित नहीं होती, माने जिसके सतीत्व को इस दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा किसी भी जन्म में खंडित नहीं कर पाता, ऐसी सत्य को धारण करने वाली सती, हा? दुनिया में सत्य क्या होता है मनुष्यों के लिए,
पुरुषों में
नहीं, सत्य एक ही होता है, दो नहीं होते,
भगवान होते
हैं सत्य है इस दुनिया में, मनुष्यों में जो पुरुष कहे जाते हैं उनमें जो शुक्राणु है वो ही सत्य है, सबसे ताकतवर चीज है, उस सत्य को जो सच्चाई से माता बनकर के धारण करती है जीवन में, वो सती कही जाती है, जो सती का गायन है कि वो सती नारी अपनी सच्चाई के आधार पर, सत्यता के आधार पर, अखंड शक्ति के आधार पर, अभिविचारी रूप में मन के संकल्पों से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वाचा से, क्या ऐसे वाचा से, कर्म इंद्रियों के कर्म से, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, अपने पति के साथ कभी धोखा नहीं देती, चोरी नहीं करती, कभी भी एकांत में बैठ करके पर पुरुष के साथ रज रज के बातें भी नहीं करती, ऐसी सती नारी को शास्त्रों में आदिति कहा गया है, जो कभी खंडित नहीं होती, अखंड भारत माता कही जाती है, क्या कही जाती है, अखंड भारत, परंतु ड्रामा, जो 2500 वर्ष तक अखंड भारत रहता है वही अखंड भारत, जब द्वैतवादी विदेशी आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, सात्विक स्टेज में नहीं तो कम से कम जब राजसी स्टेज बनती है उनकी, तो भारत को खंडित करने लग पड़ते हैं, भारत में खंड खंड मना विघटन के बीज बोते हैं, भारत की धरणी को पॉल्यूट करते हैं, कन्याओं माताओं को विचारी बनाते हैं बरगला बरगला कर, झूठी झूठी बातें सुनाकर। विचारी ज्ञान सुनने वाला बना देते हैं। हर मनुष्य आत्मा पहले संकल्प से पतित होती है, फिर दृष्टि से पतित होती है, फिर वाचा से पतित होती है, और आखिरीन कर्म इंद्रियों से भी पतित होने लग पड़ती है। तो ये दो माताओं की गति है, दो माताओं में से कोई एक बनती है इस भारत को नरक बनाने के लिए, और वही दो माताओं में से कोई एक बनती है भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनती है। जो अदिति है वो कभी भी खंडित नहीं होती, किसी जन्म में खंडित नहीं होती, सत्य को धारण करने वाली अखंड सती, जिसमें शक्ति है स्वर्ग बनाने की। परंतु वो स्वर्ग बनाने की शक्ति कब आती है? बाप को ज्ञान से पहचानेगी या अज्ञान से पहचानेगी? ज्ञान पहले आता है बुद्धि में या ज्ञानदाता पहले बुद्धि में आता है? ज्ञान पहले बुद्धि में आना चाहिए। ज्ञान आने से पहले वो अज्ञानी अंधी है या सोझरी है? अंधी है। इसलिए शास्त्रों में कहानी बना दी है अंधे और लंगड़े की। क्या कहानी बना दी? कि विषय वैतरणी नदी को पार करने के लिए अंधा भी पार नहीं कर सकता और लंगड़ा भी पार नहीं कर सकता, तो दोनों ने मिलकर के युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई? हैं?
दोनों ने एक दूसरे को सहयोग।
हाँ, वही युक्ति बनाई जो परिवार बनाने के लिए, परिवार में सुख समृद्धि स्थापन करने के लिए कोई भी स्त्री पुरुष आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। करते हैं ना?
करते हैं।
करते हैं। ये परंपरा कहाँ से चली? किसने डाली? कौन मात पिता? साकार ने डाली। अरे निराकार बाप आता है को उसको उठा के बिल्कुल फेंक दिया क्या?
नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में वो नहीं निकलते।
नहीं, वो निराकार बाप अखंड निराकारी ज्ञान का दाता है। वो अखंड निराकारी ज्ञान दुनिया की सर्वोपरि शक्ति है या नहीं? अगर है, इसीलिए गीता में कहा गया है, कोई श्लोक में ये कहा गया है क्या? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई भी चीज नहीं है। क्या?
ज्ञान के समान
पवित्र कोई भी चीज नहीं। जैसे बोला, इस दुनिया में कोई चीज कायम नहीं है, सिर्फ एक शिव बाबा ही कायम है। इस सृष्टि में सदा काल कायम है, इसलिए गीता में लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। तो देखो, हम समझते हैं कि पवित्रता कोई स्थूल बात ही है, पवित्रता सिर्फ स्थूल बात है या सूक्ष्मते सूक्ष्म शक्ति है। हाँ जी, ये ज्ञान ही सूक्ष्मते सूक्ष्म शक्ति है, इसलिए इस ज्ञान की सूक्ष्मते सूक्ष्म शक्ति का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा हुआ है? शिव बाबा। केंद्र माने स्थान, कौन सा स्थान है? अरे परम ब्रह्म तो व्यक्ति है, स्थान। अरे हाँ जी, मोस्टली ब्राह्मण ये समझते हैं कि माउंट आबू तपस्या भूमि है, वो ठीक है। नाम क्या है? माउंट आबू, ही बू माने बदबू, जहाँ बदबू का पहाड़ करके इकट्ठा हो जाए वो माउंट आबू। क्या दुनिया की गंदी से गंदी, विविचारी से विविचारी सभी मनुष्य आत्माओं का जो भोगी आत्माएं हैं उनका बड़े से बड़ा पहाड़, उनकी मन बुद्धि कहाँ जाकर के केंद्रित होगी विनाश काल में? माउंट आबू। लेकिन वो स्थूल पत्थर का, ग्रेनाइट पत्थर का ऐसा पहाड़ है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है और बहुत गहरा है, उसका फाउंडेशन जैसे शास्त्र में कहा है, ब्रह्मा और विष्णु से कहा गया ये लिंग का आदि और अंत खोजो, तो विष्णु नीचे की ओर गया और ब्रह्मा ऊपर की ओर गया। जाते गए जाते गए जाते गए, कहीं भी आदि अंत नहीं मिला। जैसे यही बात कंपिल में एक कालेश्वर नाथ मंदिर है, बहुतों ने देखा होगा है? जिसने देखा हो हाथ उठाए। कालेश्वर नाथ मंदिर में जो काला लिंग का पत्थर है वो गड्ढे में रखा हुआ है, है? हाँ जी, किसी अंग्रेज बड़े ऑफिसर ने ऑर्डर दिया इस पत्थर का अंत निकाला जाए, खोदते गए अंत मिला ही नहीं, वो और चौड़ा होता चला गया। आखिरी ने उसको बंद किया और फिर मंदिर का रूप दे दिया। नाम क्या दिया? काल का ईश्वर। दुनिया में जब बड़े से बड़ा काल आता है, सामान्य काल तो जन्म जन्मांतर आता ही रहता है, लेकिन महाकाल कब आता है? महामृत्यु कब होती है? है कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर महामृत्यु बरपा होती है, उस समय वो संसार के सामने महाकाल प्रत्यक्ष होता है। वो महाकाल कौन है, कौन सी आत्मा है? और धर्मराज कौन सी आत्मा है? धर्म का राजा है, धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा बाबा। उससे बड़ा धर्म की धारणा करने वाला, धर्म का राजा कोई आत्मा नहीं। अगर कोई है नहीं तो ब्रह्मा बाबा ही सनातन धर्म का राजा होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ही शास्त्रों में ब्रह्मा का बड़ा पुत्र मानसी संकल्प की सृष्टि सनत कुमार गाया जाना चाहिए। जिस सनत कुमार के फॉलोअर्स का नाम सनातन धर्म वाले कहा जाता है, तो ऐसा तो है नहीं। कहते हैं सनत कुमार एक नहीं था, सनत कुमार नाम के चार थे, नाम तो अलग अलग है, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, लेकिन सनत कुमार सबसे छोटे होते हुए भी ज्ञान और योग में सबसे तीखे थे, इसलिए उनको बड़ा माना गया, योगीश्वर माना गया। वो योगीश्वर का पाठ दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा नहीं। कौन? जिसको कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा तो शरीर को त्याग देते हैं, काल खा जाता है, लेकिन संसार में जो योगीश्वर कहा जाता है, योग सिखाने वाला, जो हम कहते हैं हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं राजयोग की पढ़ाई, वो शिव बाबा स्वर्ग का वर्षा देने वाला इस सृष्टि पर धर्म का पिता है या माता है? है धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है या माता के नाम पर धर्म का नाम होता है? क्राइस्ट धर्म पिता आया, जीसस नाम के व्यक्ति में आया, क्राइस्ट के फॉलोअर्स का नाम क्रिश्चियन पड़ा, धर्म पिता के नाम पर क्रिश्चियन धर्म नाम पड़ा, जीसस के नाम पर क्रिश्चियन नाम है नहीं पड़ा। ये परंपरा है, बाप के नाम पर फॉलोअर्स की सरणी चलती है। तो शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ाते हैं, और शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। इतना ही नहीं, विश्व का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक या विश्व का मालिक? क्या अंतर है स्वर्ग में और विश्व में? विश्व में विश्व धर्म आते हैं, यूनिवर्स को विश्व कहा जाता है, और जन्नत में यूनिवर्स नहीं होता है, सब धर्म वाले नहीं होते हैं। तो सर्व धर्मों के ऊपर कंट्रोलर हम बच्चों को बनाते हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ाकर? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर। जिस राजयोग की पढ़ाई कौन पढ़ते हैं? नहीं, वो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले जिनको ये राज का पता है वो क्या कहे जाते हैं? नहीं, गोप और गोपी कहे जाते हैं। क्या राज है? गोप और गोपी, जिन्होंने ऐसा पार्ट भगवान के प्रैक्टिकल रूप के साथ बजाया जो राज की बात उन 16,000 के अलावा गहराई तक तो कोई भी नहीं जानता। जानता है? नहीं जानता है। जिन्होंने वो सुख भोगा है सर्वोपरि, जिसको कहते हैं स्वर्ग से सुंदर संगम युग है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अतीन्द्रिय सुख देने वाला, इंद्रियों से परे का सुख देने वाला, अखंड सुखदाई बनाने वाला, वो राजयोग है जो गीता में लिखा है, गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्। क्या मैं तुमको क्या सुनाता हूँ? गुह्यते गुह्य, राज की बातें सुनाता हूँ। गुह्य कितने गुह्य, राज की बातें वो ही जानते हैं जिन्होंने गोप गोपी बन करके अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने परिवार की कन्याओं को राजयोग सिखाने वाले के प्रति समर्पण किया है, वो इस राज को जानते हैं। जिन्होंने समर्पण किया ही नहीं वो जानेंगे? हैं? नहीं जान सकते। अथवा जो समर्पित तो हुए परंतु राजयोग की स्टेज पर अंत तक ठहर ही नहीं सके, भाग खड़े हुए, दूसरों की बातें सुन करके बरगलावे में आ गए। वो श्रेष्ठ नंबर के राजयोगी कहें या 16,000 की माला में नीचे नंबर में आने वाले कहेंगे? इसलिए बोला कि शिव बाबा हम बच्चों को संपूर्ण स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कि त्रेता के अंत में जो सेमी स्वर्ग कहा जाता है उसका मालिक बनाते हैं। कहाँ का मालिक बनाते हैं? हैं? शिव बाबा तो अपनी तरफ से संपूर्ण स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। क्या? संपूर्ण स्वर्ग का मालिक। लेकिन बच्चे कोई बनते हैं और कोई नहीं बनते। जो नहीं बनते हैं उनकी संख्या ज्यादा है या जो बनते हैं उनकी संख्या ज्यादा है? होने की संख्या बहुत है, इसलिए बोला कि 16,000 की संख्या में आने से तो अच्छा है साहूकार बन जाए। जो साहूकार होते हैं बड़े बड़े, उनके घर में परिवार में बहुत सुख समृद्धि होती है, राजाओं की तरह जैसे सुख समृद्धि होती है, उस सुख समृद्धि में पलें, वहां जाकर के जन्म लें, बाप के घर में आकर के समर्पित होकर के फिर धोखा देकर चले जाएं, तो वो क्या बनते हैं? है वो फिर चांडाल का पद पा लेते हैं। तन मन धन अर्पण करके अगर कोई वापस ले ले तो कौन सा पद मिलता है? चांडाल का पद मिलता है। ऐसे समर्पित होने वाले और भाग जाने वाले, अनिश्चय बुद्धि बनने वाले नीच पद पाते हैं। सबसे नीचा पद है चांडाल, उससे ऊंचे है दास दासी। लेकिन ये बताया कि वो राजकुल में ही दास दासी बनेंगे, राजकुल में ही चांडाल बनेंगे। क्या कहा? है जिनको धोखा देकर गए उन्हीं के सामने नाकनीजी करनी पड़े, और इसी युग में इसी जन्म में नाकनीजी करनी पड़ेगी या अगले जन्म में? इसी जन्म में। जैसे राम की राजगद्दी का चित्र देखा होगा, देखा? किसी ने देखा? हाथ उठाओ। बहुतों ने देखा। उस राजगद्दी में दिखाते हैं कि उस राजधानी में जो राजगद्दी के रूप में दिखाई गई है उसमें राजा रानी भी बैठे हैं, सिंहासन पर विराजमान है। उस सिंहासन के ऊपर छत्र छाया है, माने उन पर भगवान की छत्र छाया सदैव रहती है। दूसरी बात, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, बड़े भाई को धोखा देने वाले विधर्मियों के पक्के बीज हैं, जो आदि में तो बड़े भाई के सहयोगी बनते हैं। किसके सहयोगी? कौन? राम की राजगद्दी में जो चित्र दिखाया है वो ये बात स्पष्ट होती है कि आदि में तो उन्होंने थोड़ा सहयोग दिया, लेकिन मध्य में और अंत तक भी, जब तक पूरी राजधानी स्थापन होती है तब तक सक्रिय विरोध करते हैं, मिलकर विरोध करते हैं। देखो आदि में जिन्होंने सेवा का बीज बोया वो बड़ी बात हो गई या छोटी बात हुई? क्यों? खेती में भी मौसम शुरू होता है और मौसम शुरू होते ही आदि में जो बीजारोपण कर देते हैं तो उनको फल अच्छा मिलता है, फसल अच्छी मिलती है, और जो लेट कर देते हैं हैं उनको फसल अच्छी नहीं मिलती। तो ये नियम का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में भक्ति मार्ग में 2500 साल द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने के बाद से लेकर कलयुग के अंत तक जितना भी सभी धर्मों में भक्ति मार्ग चलता है, अंधश्रद्धा का मार्ग चलता है, उस मार्ग में फाउंडेशन डालने वाली वो ही आत्माएं बनती हैं जिन्होंने ज्ञान को पूरी रीति नहीं समझा और न समझने के कारण बाप के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट को भी नहीं पहचाना, न पहचानने के कारण वो शिवो अहम बन के बैठती है। ब्रह्मा को ही फॉलो करती है, जिसे ब्रह्मा की आत्मा समझती है दादा लेखराज की, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से ऊंचा ब्रह्मा कोई है ही नहीं। मैं गीता का साकार भगवान हूं, शिवो अहम, जिस शिव की शिव के मंदिरों में आज तक भी पूजा होती है वो मैं हूं। तो भक्ति मार्ग में सभी धर्मों की जो भी परंपराएं देखी जाती हैं अंधश्रद्धा की, उन सब का फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। इसलिए गीता में कहा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य, इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, मेरे वर्तमान, वर्तमान है रास्ता, मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने जीवन में जो रास्ता अपनाया उसी रास्ते पर चलते हैं। तो देखो कितना बड़ा महत्व हो गया संगम युग का, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का। वो संगम जितना जितना शॉर्ट होता जाता है, क्या अभी कितने साल हो गए संगम को? 80 साल होने जा रहे, ये तो लंबा समय हो गया। इस लंबे समय में जो आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करने के निमित्त बनी, उनके पुरुषार्थ का उतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य अभी राजधानी की स्थापना होने तक आने वाले 10 वर्षों का मूल्य है और अभी भी है। जैसे दुनिया में जो ऋषि मुनि हुए रात्रि के निविड़ अंधकार में, उस समय घड़ियां नहीं होती थी, तारों की स्थिति देखकर ज्ञान के आधार पर जान लेते थे कि अभी रात्रि का कितना समय बचा है, सूर्योदय होने में कितना टाइम बाकी है, और वो अमृत वेले उठ जाते थे, अमृत वेले का पुरुषार्थ करते थे, जानते थे कि सूर्योदय होने से पहले जितना हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे उतना हमारी आत्मा ज्यादा पावरफुल बनेगी। सूर्योदय होने के बाद फिर उतना पुरुषार्थ पावरफुल नहीं रहता। तो ज्ञान सूर्य भी इस सृष्टि पर उदय होने का एग्जैक्ट टाइम होता है या नहीं होता है? जैसे बच्चा गर्भ में 9 महीने तक गुप्त ही पलता रहता है। ऐसे ही पांडव और पांडवों का बाप पांडु कहो, पंडा कहो, सच्चा रास्ता बताने वाला कहो, लंबे समय तक गुप्त पार्ट बजाते हैं। क्या कैसा पार्ट बजाते? लंबे समय तक गुप्त पार्ट बजाते। और जब ज्ञान सूर्य पूरा उदय हो जाता है तो वो पांडव, जिन्हें पांच पांडव कहा जाता है, और उनके फॉलोअर्स सब प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जो पांडव धर्म युद्ध कहो, धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए गए हैं, कर्मों का युद्ध कहो, उस युद्ध में पहले पहले पांच की संख्या में थे। जब युद्ध का अंतिम समय, अंतिम छोर आता है तो उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती? 7 अक्षोणी हो जाती है। कौरव, पांडव, यादव, दुनिया की सारी संख्या शास्त्रों में 18 अक्षोणी बताई है, जो वास्तव में 500-700 करोड़ की संख्या है। तो देखो 18 अक्षोणी में से 11 अक्षोणी कौरव और यादव बचते हैं विपरीत बुद्धियों की सेना में। और सच्चाई के पाला में आने वालों की संख्या कितनी हो जाती? 7 अक्षोणी हो जाती। बताओ वो पांच पांडव जो बिगमंगे के रूप में दिखाए जाते हैं, जिनके हाथ में दुनिया भी कोई सत्ता नहीं होती, तन धन धाम सुहद परिवार कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो पांडव भगवान का आधार लेकर के जो गुप्त पार्ट बजाने वाला है, पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला है, उसको पहचान लेते हैं, गीता ज्ञान के आधार पर पहचानते हैं। जिस गीता ज्ञान का जिक्र दादा लेखराज ब्रह्मा की वाणी में, ब्रह्म वाक्यों में कहा गया, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत पी करके देवताएं अमर बन जाते। अभी वो अमरनाथ प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। क्या प्रत्यक्ष? तो क्या अमरनाथ का प्रत्यक्षता रूपी उस आत्मा का जन्म भी नहीं हुआ है। क्या कहा? 10 साल पहले ही बता दिया। जो अमरनाथ सागर मंथन में मुख्य पार्ट बजाता है, जो पार्ट बजाने की कोई में क्षमता नहीं है, न देवताओं में, न राक्षसों में, न मनुष्यों में, कौन सा पार्ट है? अरे मंथन से ही तो वो अमृत निकलता है अंत में, जिससे देवताएं अमर बनते हैं। लेकिन वो अमृत तो अंत में निकलता है, और क्या पहले निकलता है? हाला हाल विषय वासना का भंडार निकल पड़ता है। वो भंडार ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक ब्राह्मणों में भी और एडवांस ब्राह्मणों में भी पलता है। इसलिए प्रत्यक्षता नहीं हो पाती, क्योंकि जिनके बीच वो विषय वासना का भंडार पलता है जीवन में, वो एक ब्रह्म वाक्य को पूरा फॉलो ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। कौन सा वाक्य है? ये तो महामंत्र है, वाक्य नहीं है। मन महानाम भव, ये मंत्र है, महामंत्र पूरा वाक्य नहीं है। हैं? शिव बाबा,
एक शिव बाबा
नहीं, वो महावाक्य है जो सुना लगभग सभी ने होगा। क्या कम से कम जो रोज मुरली सुनते हैं उन्होंने तो जरूर सुना होगा। बताएं? हैं? तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्या महावाक्य? नहीं याद आया? मुरली में सुना नहीं? सुना, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। सुना कि नहीं सुना? शंकर, जो शंकर नाम पड़ता है वो संकरण की वृत्ति है, उसके अंदर स्वभाव संस्कार में है, और वो संकरण का स्वभाव संस्कार जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तब से उस आत्मा में वो स्वभाव संस्कार सबसे जास्ती पलता है या कम पलता है? क्यों है? है? बड़ा पार्ट है, वो पार्ट इसलिए पलता है कि जो बड़े राजा का पुत्र होता है और छोटे मोटे व्यक्तियों का पुत्र होता है वो दोनों कुसंग में आए तो ज्यादा खतरनाक कौन बनता है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में वो आत्मा कौन जो बड़े से बड़े बाप का बच्चा है? जब द्वैतवादी दुनिया आती है दुष्टों की, दुष्ट युद्ध करने वालों की, दुष्ट शासन करने वालों की, उस दुनिया में बड़े ते बड़ा आरंभ से ही दुर्योधन और दुशासन वृत्ति किस में पलती है? बताओ। रामबली आत्मा में पलती है। बीज रूप में पलती है, पत्तों के रूप में पलती है, टहनियों के रूप में पलती है, फलों के रूप में, फूलों के रूप में पलती है, या बीज रूप में ही पलती रहती है? बीज माने मनसा के संकल्प, और सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? संकल्प। ऐसी पावरफुल आत्मा जो दुनिया के द्वैतवादियों के बीच बड़े से बड़ा दुर्योधन दुशासन बन जाती है, जिसके लिए मुरली में बोला जाता है एक वाक्य, क्या?
ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे
नहीं। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, क्या बात आती है? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। एक तरफ बाप कहते हैं मनमाना बाप, कैसे चलो, मेरे मन के संकल्पों को पहचानो कि बाप क्या चाहता है, ऐसा ही कर्म करो, ऐसी ही बात करो, ऐसा ही संकल्प करो। लेकिन होता क्या है, ऐसा ही करते हैं जैसा बाप चाहता है मनुष्य सृष्टि का, या विपरीत करते हैं? इसलिए ये दुनिया की हालत हो जाती है कि बाप जो कहते हैं वो नहीं करते, क्या?
बाप जो कहते हैं वो,
और बाप जो करते हैं वो बच्चे वो ही करते हैं, उसी के ऊपर नजर रहते हैं, उसी बातों का लेन देन करते हैं। अखबारों में भी बड़े रुचि से पढ़ेंगे, इंटरनेट की वेबसाइट में भी बड़ी रुचि से पढ़ेंगे, फेसबुक में बड़ी रुचि से पढ़ेंगे, और ढेर की ढेर दूसरों की बातें सुन सुन करके माथा खराब करते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जो बाप राजयोग सिखाते हैं वो सहज राजयोग है। वाह भाई, सहज राजयोग है तो सबको सहज लगना चाहिए या कठिन लगना चाहिए? सहज परिवर्तन हो जाना चाहिए या 80 साल से भी ज्यादा लगना चाहिए? फिर क्यों नहीं होता? ये सहज राजयोग सहज तो है ना बच्ची, स्वर्ग में जाने के लिए बहुत सहज है, क्या? हाँ, जितने अब्बल नंबर स्वर्ग में जाएंगे उनके लिए तो बहुत सहज है, मन 8 के लिए सहज है या सबके लिए सहज है? 8 के लिए सहज। राजा बनने के लिए बहुत सहज राजयोग है, क्या? आधीन बनने की बात नहीं, राजा आधीन होता है या स्वाधीन होता है राज्य में? स्वाधीन होता है। ये संस्कार स्वाधीनता के डालने वालों के लिए ये राजयोग बहुत सहज है, उन्हें स्वचिंतन करना चाहिए। राजयोगियों को یا پرچنتن کرنا چاہیے؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، تو ہم تو بابا بابا کرتے رہیں، کیا ہمارے مخ سے بابا بابا ہی رٹن آنتی رہے، شیو بابا سے ہم بہت سہج سہج برسا لے رہے کہ ہمارا بے حد کا بابا ہے، بے حد کا بابا ہے یا بے حد کا باپ ہے؟ بے حد کا بابا ہے، اور برسا ہم کو بڑا سہج دیتے ہیں، کیا کیسا برسا دیتے ہیں؟ بڑا سہج برسا دیتے ہیں، سہج سہج یاد کرتے رہو اور برسا لیتے رہو، کیا جتنے بھی دھرم پتائے ہیں مکھ مکھ پارٹ داری ہیں نا دنیا کے، دھرم پتائے گریٹ فادرس ہیں نا، ان کا پرسارتھ نراکار کو یاد کرنے کا کٹھن پرسارتھ ہے یا نراکار ساکار کے میل کو یاد کرتے ہیں؟ نراکار کو دھرم پتائیں یاد کرتے ہیں، ساکار کو تو یاد کرتے ہی نہیں، گھنا کرتے ہیں، ایسا دیش آتا ہے۔ اور بابا راجا بننے والے بچوں کا پرسارتھ بڑا سہج کر دیتے ہیں، کیا سہج کر دیتے ہیں؟ ہاں، چھوٹا روپ یاد نہیں آتا ہے تو کیا کرو، ارے بڑے روپ کو ہی یاد کرو، جو جنم جنمانتر تمہاری عادت پڑی ہوئی ہے، بدھی کا یوگ ساکار میں لگ جاتا ہے، اٹیچمنٹ ساکار سوروپ میں ہو جاتا ہے کہ 63 جنم آتما میں ہوتا رہا، ساکار میں ہوتا رہا، تو یہ بہت سہج ہے، کیا نراکار جیوتی بندو آتما نہیں یاد آتی ہے تو کوئی بات نہیں، کیا کرو، 500-700 کروڑ کی جب سدگتی ہو سکتی ہے، مکتی ہو سکتی ہے تو ہماری نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی تھوڑے سمے کے لیے ہوتی ہے اور ہماری لمبے سمے تک ہو سکتی ہے۔ ہمارے پرسارتھ میں ہم نے اگر لمبے سمے سے اس ساکار کو پہچانا ہے اور پہچان کر کے فالو کیا ہے اس کی آگیاؤں کو، تو ہمیں لمبے سمے کی جیون مکتی کا برسا ملے گا یا الپکال کا ملے گا؟ لمبے سمے کا ملتا ہے، اتنا سہج برسا دیتے ہیں، کہتے ہی ہیں کہ مجھے یاد کرو بچے اور برسے کو یاد کرو، کائی کائی کو یاد کرو، مجھے یاد کرو اور برسے کو یاد کرو، اوم شانتی۔